14 जनवरी दिन सोमवार दिन भर मैं हूं रेहान फदल। कुर्दों को लेकर अमेरिका और तुर्की में तनातनी।
The Turks have made clear that they understand that there are folks down in Syria that have their rights. We also want to make sure that those in Syria aren't attacking terrorists, aren't attacking Turkey from Syria.
प्रयागराज में कल से शुरू होने वाले कुंभ स्नान की तैयारी पूरी
गए हैं कि चूंकि कल शाही स्नान का पहला दिन है और कल से शुरुआत है महाकुंभ की, तो हम लोगों ने सोचा कि उसी दिन ठीक टाइम पे स्नान किया जाए।
होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सिंधुआसिनी से। तुर्की ने कहा है कि वो अपने देश को आर्थिक रूप से बर्बाद करने की अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी से नहीं डरेगा। अमरीका ने कहा है कि सीरिया से उसकी सेना के लौटने के बाद अगर कुर्द सेना तुर्की पर हमला करती है तो उसके खिलाफ कड़े कदम उठाएगा। तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुत चावोशोलू ने कहा कि ट्वीट की गई टिप्पणी वास्तव में ट्रंप के ऊपर अपने देश में पड़ने वाले दबाव का असर है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति के प्रवक्ता इब्राहिम कालिन ने एक ट्वीट में कुर्द समूहों पर उनके देश की स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि चरमपंथी आपके सहयोगी नहीं हो सकते। ट्रंप ने संकेत दिया है कि उनके विदेश मंत्री के मध्य पूर्व का दौरा सीरिया में अमरीका समर्थित कुर्द लड़ाकों के लिए एक सुरक्षित क्षेत्र का निर्माण भी हो सकता है। यूरोपीय संघ के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक पत्र प्रकाशित करके ब्रेक्जिट समझौते के मसौदे के आश्वासनों के बारे में बताया है। ये मसौदा कल ब्रिटेन की संसद के समक्ष मतदान के लिए रखा जाएगा। यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के प्रमुखों द्वारा लिखे गए पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि यूरोपीय संघ आयरिश सीमा पर शारीरिक जांच को दरकिनार करने वाली विवादित नीति का इस्तेमाल नहीं करना चाहता है। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर भविष्य की साझेदारी समय पर तय नहीं होती है तो वो केवल अस्थायी व्यवस्था पर जोर देगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने सांसदों को चेताया है कि लोगों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आस्था है और अगर ब्रेक्जिट को लेकर बाधाएं पैदा की जाती हैं तो इससे भारी हानि होगी। यूरोपीय आयोग के प्रवक्ता मार्गारेटिस हिनास ने कहा,
वी शैल नॉट एंगेज इन इंटरप्रेटिंग द इंटरप्रिटेशन,
हम व्याख्या की व्याख्या करने या स्पष्टीकरण में शामिल नहीं होंगे। हमारा पत्र सार्वजनिक है, जो चाहे इसे देख सकता है और अपनी राय बना सकता है। आप भी इस पर अपनी राय बना सकते हैं। अगला कदम ये है कि कल संसद में इस पर मतदान होना है। यूरोपीय आयोग के प्रवक्ता मार्गारेटिस हिनास के शब्द। इटली में एक दशक से फरार एक शख्स को बोलीविया से प्रत्यर्पित करके रोम लाया गया है। 1970 में एक वामपंथी समूह का नेतृत्व करने वाले सीजर बतिस्ती को 4 हत्याओं में शामिल होने का दोषी पाया गया था। इटली के गृह मंत्री मातियो साल्विनी ने कहा कि बतिस्ती अपने जिंदगी के बाकी दिन जेल में गुजारेंगे। उनको बोलीविया से सीधे इटली के सरकारी विमान में लाया गया है। इटली के कानून मंत्री अल्फोंसो बोनाफेड ने कहा,
ओजी डिशामो अल मोंडो के नेसुनो पुओ सोत्रार्सी अला जुस्टिसा।
आज हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि कोई भी इटली के कानून से बच नहीं सकता है। हम उस हत्यारे की बात कर रहे हैं जो गंभीर अपराधों का दोषी है और जो देश छोड़कर भाग गया था। अब बतिस्ती द्वारा मारे गए पीड़ितों के परिजनों का दर्द कम होगा और साथ ही जनता का दर्द भी। इटली के कानून मंत्री अल्फोंसो बोनाफेड के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। दिल्ली पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाए जाने के मामले में आज पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य पर भी भारत विरोधी नारे लगाने का मामला दर्ज किया है। अमरीका के साथ जारी ट्रेड वॉर के बीच दिसंबर में चीनी निर्यात में 2 साल के अंदर सबसे भारी गिरावट दर्ज की गई है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। तुर्की ने कहा है कि वो राष्ट्रपति ट्रंप की उस धमकी से कतई विचलित नहीं है। इसमें कहा गया था कि अगर सीरिया से अमेरिका से हटने के बाद तुर्की वहां मौजूद कुर्द बलों पर हमला करता है तो वो उसे आर्थिक रूप से बर्बाद कर देगा। तुर्की के विदेश मंत्री मावलूत कावुसोग्लू ने कहा है कि श्री ट्रंप की यह टिप्पणी बताती है कि उन्हें अपने देश में कितने दबाव का सामना करना पड़ रहा है। न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को एक ट्वीट में लिखा कि लंबे समय से लंबित सीरिया से अमरीकी फौज की वापसी अब शुरू हो रही है। बचे कुचे आइसिस के खिलाफत पर कई दिशाओं से हमले जारी हैं। अगर आइसिस फिर सर उठाता है तो उस पर करीब के सैन्य अड्डों से हमले किए जाएंगे। इसी ट्वीट में ट्रंप ने लिखा कि अगर तुर्की ने कुर्द बलों पर हमले किए तो तुर्की को आर्थिक तौर पर तबाह कर देंगे। ट्रंप ने यह जिक्र नहीं किया कि अगर तुर्की कुर्द लड़ाकों पर हमला करता है तो वो तुर्की की अर्थव्यवस्था को कैसे तबाह करेंगे। ट्रंप ने ट्वीट में यह भी लिखा कि वो नहीं चाहते कि कुर्द ऐसा कुछ करें जिससे तुर्की भड़क जाए। अमरीकी राष्ट्रपति ने तुर्की और सीरिया के बीच 20 किलोमीटर चौड़ा बफर जोन बनाने का जिक्र भी किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि सीरिया में अमरीकी कार्रवाई से सबसे ज्यादा फायदा ईरान, सऊदी अरब और सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद को हुआ है और अब अमरीकी बलों के घर लौटने का वक्त आ गया है। तुर्की ने ट्रंप की ट्वीट पर लिखी गई धमकी पर नाराजगी जताई है। तुर्क राष्ट्रपति अर्दोगान के प्रवक्ता इब्राहिम कालिन ने एक ट्वीट में लिखा कि आतंकवादी आपके दोस्त या गठबंधन के सहयोगी नहीं हो सकते हैं। इब्राहिम कालिन ने लिखा कि तुर्की को उम्मीद है कि अमरीका अपनी रणनीतिक साझेदारी का सम्मान करेगा। तुर्की के विदेश मंत्री नवलुत कावसुग्लू ने ट्रंप की धमकी के जवाब में कहा कि तुर्की को आर्थिक तौर पर तबाह करने की धमकी देने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। उधर अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने एक अमरीकी टीवी से इंटरव्यू में कहा कि कुर्दों के मामले पर अमरीका और तुर्की के बीच बातचीत जारी है।
The Turks have made clear that they understand that there are folks down in Syria that have their rights. We also want to make sure that those in Syria aren't attacking terrorists, aren't attacking Turkey from Syria.
तुर्की अधिकारियों ने यह साफ किया है कि वो समझते हैं कि सीरिया में जो कुर्द लोग हैं उनके अधिकार हैं और हम ये भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो कुर्द सीरिया में हैं वो तुर्की पर हमले ना करें। हम इस मामले में तुर्की के साथ बातचीत कर रहे हैं। अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के शब्द। पोम्पियो ने यह भी कहा कि उन्होंने फोन पर तुर्की के विदेश मंत्री मावलूद कावुसोग्लू से बात की है और उन्हें उम्मीद है कि कुर्द लड़ाकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुर्की के साथ समझौता हो जाएगा। सीरिया में कथित इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में अमरीकी सैन्य बल कुर्द लड़ाकों के साथ मिलकर लड़ते रहे हैं। वहीं तुर्की कुर्द समूह पीकेके और पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट या YPG को आतंकवादी संगठन मानता है और इस समूह को तबाह करने की धमकी देता रहा है। सीरिया के करीब 30% हिस्से पर YPG के नेतृत्व वाले गठबंधन सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का नियंत्रण है। अमरीका इस गठबंधन की मदद कर रहा था। पिछले महीने राष्ट्रपति ट्रंप ने सीरिया से अमरीकी सैन्य बलों को वापस बुलाने का ऐलान किया था। उसके बाद से मध्य पूर्व में अमरीका के कुछ सहयोगी देशों में बेचैनी बढ़ी है। सीरिया से अमरीकी फौज की वापसी के मामले में सऊदी अरब के शाही परिवार के वरिष्ठ सदस्य प्रिंस तुर्की अल फैसल ने BBC से कहा कि इससे क्षेत्र में नकारात्मक असर होगा जिसका फायदा ईरान, रूस और सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद को होगा। करीब 2000 अमरीकी सैनिक सीरिया में तैनात हैं। अमरीकी सैनिक सबसे पहले 2015 में सीरिया पहुंचे थे। खबरें हैं कि धीरे धीरे अमरीकी सेना के भारी साजो सामान सीरिया से निकाले जा रहे हैं और जानकार मानते हैं कि अभी सीरिया से अमरीकी फौज के पूरे तौर पर निकलने में 3 से 4 महीने तक लग सकते हैं। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
खबर सच है अगर BBC पर है।
और अब कुछ खबरें भारत से। कर्नाटक में BJP और कांग्रेस JDS गठबंधन के बीच इस बात पर जुबानी जंग छिड़ी हुई है कि कौन दूसरी पार्टी के विधायकों को अपनी तरफ तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इस विषय पर लग रही कई अटकलों के बीच BJP नेता BS येदियुरप्पा ने दिल्ली में दावा किया है कि सभी BJP विधायक दिल्ली में ही रहेंगे ताकि उन पर दल बदल के लिए दबाव नहीं बनाया जा सके। बेंगलोर से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
पिछले 6 महीनों में ऐसा बहुत बार सुनने को आया है कि JDS कांग्रेस की गठबंधन सरकार कभी भी गिर सकती है और BJP सत्ता में फिर से वापस आ जाएगी। ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन इसको लेकर अटकलों का बाजार बार बार गर्म हो जाता है। पिछले महीने कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल में 8 खाली स्थान भर लिया और 2 मंत्रियों को निकाल दिया पूरा प्रदर्शन के कारण। उनमें से एक हैं रमेश जारकीहोली, जो बहुत भागदौड़ के बाद दिल्ली से बेंगलुरु वापस आ गए क्योंकि उनके साथ बहुत विधानसभा के सदस्य नहीं थे। दो दिन पहले यह खबर आई कि कांग्रेस के 3 विधानसभा सदस्य मुंबई चले गए हैं। इस पर राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई। मैसूर में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री HD कुमार स्वामी ने कहा, देखिए मुंबई में जो विधानसभा के सदस्य गए हैं और BJP के जो सदस्य दिल्ली में हैं, वो सारे के सारे हमारे साथ हैं। इससे हमारी सरकार को कुछ नहीं होगा। आज सुबह 7:30 बजे ही हमने जो सदस्य मुंबई में हैं, उनसे कई विषयों पर बातचीत की है। ये थे HD कुमार स्वामी के शब्द। दरअसल ये मामला इसलिए लगातार आ रहा है क्योंकि पिछले मई के विधानसभा चुनाव में किसी एक पक्ष को बहुमत नहीं मिला था। विधानसभा के 224 सीटों में BJP ने 104 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस ने 80 और JDS ने 37। कांग्रेस और JDS ने गठबंधन सरकार बना लिया, एक BSP, KJP और एक निर्दलीय के समर्थन से। BJP में पूर्व मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा के समर्थकों में ये भी फिक्र है कि इस साल के लोकसभा चुनाव के बाद पक्ष की केंद्र नेतृत्व उन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेज देगा। इसका मतलब ये कि वो फिर से मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। इसीलिए ये बात लगातार राजनीतिक हलकों में सुनने को मिलती है कि अगर 17 सदस्यों ने विधानसभा से त्याग पत्र दे दिया तो JDS कांग्रेस सरकार गिर जाएगी। लेकिन ये स्पष्ट होते जा रहा है कि लोकसभा के चुनाव की तैयारी के माहौल में बहुत सदस्य संसाधन इकट्ठा करने के समय सरकार को नहीं गिराएंगे। लेकिन येडियुरप्पा इस परिस्थिति को अलग नजरे से देखते हैं। दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए येडियुरप्पा ने कहा, हम सारे 102 विधानसभा सदस्य यहाँ दिल्ली में ही रहेंगे क्योंकि कुमार स्वामी हॉर्स ट्रेडिंग या घोड़ा व्यापार करने निकले हैं। हम और 2 दिन दिल्ली में ही रहेंगे। ये थे BS येडियुरप्पा के शब्द। दरअसल BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बेंगलुरु में सदस्यों को मिलने के बजाय दिल्ली बुलवा लिए हैं और पिछले 48 घंटों में ये बैठक नहीं हो पाई है क्योंकि अमित शाह बहुत व्यस्त हैं। बहरहाल कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने हर कांग्रेस मंत्री को चेतावनी के आदेश दिए हैं। इमरान कुरैशी, BBC बेंगलुरु।
प्रयागराज में कुंभ मेले की शुरुआत हो गई है। कल पहला शाही स्नान है और लाखों की संख्या में लोगों के आने की संभावना है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तो किए ही हैं, साथ ही इस बार मेले का क्षेत्र भी काफी बढ़ा दिया है ताकि लोगों को असुविधा और भीड़ भाड़ ज्यादा ना हो सके। बड़ी संख्या में लोग आज से ही स्नान के लिए पहुंचने लगे हैं। हमारे सहयोगी समीर आत्मन मिश्र भी प्रयागराज के मेला क्षेत्र में हैं और संगम तट पर उन्होंने कुछ श्रद्धालुओं से बात की है।
कल यानी 15 जनवरी से आधिकारिक रूप से कुंभ मेले की शुरुआत हो रही है। कल इसका पहला शाही स्नान है, लेकिन यहाँ भीड़ जो है इसी अभी से आज से ही जुटनी शुरू हो गई है। तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं, घूम रहे हैं। बहुत से लोग यहाँ इस समय शाम के वक्त 6 बज रहे हैं और इस समय भी यहाँ नहा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। हम लोग संगम के किनारे खड़े हैं। कहाँ से आए सर?
दरियापुर से, हसनापुर के दौरे से, मेरठ जिले से।
अच्छा, कब आए हुए?
8 दिन हो लिया।
तो कल तैयारी है स्नान करने?
हाँ, स्नान करेंगे पक्का। साइड स्नान
कहाँ पे?
यहीं करेंगे जी, यहीं करेंगे महाराज जो गए
संगम में।
हाँ, संगम में।
आप कहाँ से हैं माता जी?
हम भैया जी हरिद्वार से हैं। तिलक चंदन लगाते हैं, पूरा माह का महीना नहाएंगे, रहेंगे, स्नान करेंगे।
तो क्या दिख रहा है इस बार काफी ज्यादा कुंभ की ब्रांडिंग की गई है? आप लोग लग रहा है कई लोग साथ में?
हाँ, साथ में आए कई लोग हैं।
तो क्या पहली बार आए?
नहीं नहीं, हम कई चक्कर आ चुके हैं, दूसरा चक्कर हो रहा है।
बहुत बहुत ऐतिहासिक तैयारी है माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की। ऐतिहासिक कुंभ लग रहा है और यही सारी चीजें हम लोगों ने सोच के, हम लोग एक दिन पहले ही आ गए हैं कि चूंकि कल शाही स्नान का पहला दिन है और कल से शुरुआत है महाकुंभ की, तो हम लोगों ने सोचा कि उसी दिन ठीक टाइम पे स्नान किया जाए। बाकी कुंभ की हम लोग अभी तो घूम रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को।
गाड़ियां वगैरह नहीं आने दे पा रही, कैसे? हाँ,
पैदल आए हम सब लोग।
अच्छा
भाई, जब आए स्नान करने तो हम सब लोग पैदल आए।
देखते
चले आ गए यहाँ तक।
अंदाजा ही नहीं लगा कि कब हम लोग यहाँ पहुँच गए।
स्नान हो गया?
छिंदवाड़ा से आए। छिंदवाड़ा से
कमलनाथ जी के यहाँ से?
हाँ।
तो कब आए आप?
हाँ, अभी से आए, आज 18-20 आदमी आए।
पूरा गांव का गांव ही आया हुआ है। तो क्या कार्यक्रम है, क्या प्रोग्राम है आपका?
हमारा प्रोग्राम यही है, नहाने का गंगा जी।
कल सुबह नहाएंगे कि अभी नहा लिए?
अभी भी नहाएंगे और कल भी नहाएंगे।
गंगा माई के आशीर्वाद से अच्छे ही रहे थे, कोई बुरे नहीं रहे। ओके, दरबार में आओ तो अच्छा ही है।
ये पहली बार आएंगे? इसके पहले
नहीं, हमारी 3 बार होगा, 3 फेरी हो गई। अच्छा दिख रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है।
यहाँ कुछ लोग हमारे साथ हरियाणा से आए हुए लोग हैं
जी, हम सुबह 8 बजे आए।
अच्छा लग रहा है, हम तो ये तीसरी बार हो गया यहाँ पर आते।
बहुत अच्छा प्रबंध करा क्या, पर चोरों का कोई प्रबंध नहीं, चोरों ने तो इतना कमाल कर रखा बस मार दो सभी कुछ छीन लिया, कैसे जाएंगे कैसे परेशानी होगी।
तो कितने दिन का प्रोग्राम है आप लोगों का?
सुबह निकलेंगे 8 बजे, सुबह 8 बजे निकल जाएंगे,
सुबह
स्नान करने के बाद।
हम लोग इलाहाबाद से आए हुए हैं, हम लोग संगम नहाने आए हैं, पूरे परिवार लेके आए हैं। आज शाम को हम लोग नहाएंगे ना, फिर सुबह रुकेंगे ना, सुबह हम लोग जाएंगे दान करके, बहुत जन पब्लिक आएगी।
अच्छा,
वो जैसे अगले साल भेड़ हुआ तो वैसे तरह पब्लिक जनता ना मारी जाएगी, वो इसी वजह से हुआ था।
ये छोटा सा बच्चा भी आपके साथ है, है?
जी
आपको लगा नहीं इतनी भीड़ भाड़ होगी?
सब कुछ है, लेकिन आस्था का भी एक विषय होता है ना, माता रानी को भाई मकर संक्रांति और शाही स्नान करें, अपना भी एक हिंदू धर्म में जी एक अपना आस्था का केंद्र है।
अद्भुत दृश्य है यहाँ पे, और जो नमामि गंगे है नरेंद्र मोदी जी का इनिशिएटिव, वो यहाँ पे दिख रहा है, स्वच्छ भारत का इनिशिएटिव भी यहाँ पे देखने को मिलता है।
स्वच्छ दिख रही, देखिए सारे फूल माला सब पूरा गंदगी फैली हुई है।
हाँ बिल्कुल दिख रही है, आप यहाँ पे जाके देखिए और पूरे पार्ट पे जाके देखिएगा। यहाँ पे भी पूजा हुई है, शाम की आरती हुई है, इसके लिए यहाँ पे भी दिख रहा है, और बाकी आप पूरा परिसर देखेंगे तो पूरा गार्बेज फ्री।
यहाँ आने से ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग में आ गए, अभी तो ऐसी हवाएं वगैरह ऐसा लग रहा है ना, एहसास हो रहा है कि नहीं अभी ऐसा? और शाम का वक्त है,
ठंडा भी बहुत ज्यादा नहीं है ना?
नहीं नहीं नहीं, एकदम नॉर्मल है, बहुत बढ़िया मौसम सुहाना है।
तो ये बहुत सारे लोग यहाँ युवक हैं, युवा लोग हैं, और दूसरे जगहों से आए, दूसरे प्रांतों से आए।
मैं कौशाम्बी का हूँ, कौशाम्बी के मैं इलाहाबाद आया था, मुझे स्वर्ग जैसा लगा पहली बार। अच्छा। और 2013 में आया था, बल्कि
स्वर्ग जैसा क्या लगा, स्वर्ग में क्या होता है?
अरे मतलब हर चीज देखने में आनंद है, लाइटें इतनी अच्छी है, मतलब यहाँ की सफाई हर चीज देखने में बहुत अच्छा।
ये देखिए बाबा जी भी आपका समर्थन कर रहे हैं।
प्रयाग धाम है, यहाँ पर भारत के कोने कोने के ऋषि मुनि तपस्वी साधु संत लोग आए हैं, अपना अपना खलसा लगाए हैं, और सब यात्री लोग उसमें हजार लाखों लाख की संख्या में टिके हुए हैं, सब भगवान में है, सब भगवान के नाम में है।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। बिहार में विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव ने मायावती और अखिलेश यादव से मुलाकात कर उन्हें सपा बसपा गठबंधन के लिए बधाई दी है। तेजस्वी और अखिलेश ने आज लखनऊ में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा, इस पर क्या रही जदयू की प्रतिक्रिया, और इन मुलाकातों के क्या हैं राजनीतिक मायने, सुनिए पटना से मनीष शांडिल्य की इस रिपोर्ट।
राजद नेता तेजस्वी यादव ने उत्तर प्रदेश में गठबंधन करने के लिए सपा और बसपा का शुक्रिया अदा किया है। शनिवार को हुए इस गठबंधन के ऐलान के अगले ही दिन तेजस्वी ने लखनऊ पहुंचकर बसपा प्रमुख मायावती से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी और पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया। वहीं आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ मिलकर लखनऊ में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि देश हित में हुए सपा बसपा गठबंधन से उनके पिता की कल्पना जमीन पर उतरी है।
लालू जी ने जो कल्पना करने का काम किया था, आज जाकर के जो साकार हुआ है, हम इसके लिए सबसे पहले अखिलेश जी को हम धन्यवाद देने आए हैं, और मायावती जी को भी हम कल मिलकर के आए, उनको भी हमने धन्यवाद दिया कि देश हित में ये आप लोगों ने कदम उठाने का काम किया है, संविधान को बचाने के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए, और देश पे जो खतरा जो मंडरा रहा है।
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार से पूरे देश की जनता नाराज है और उनके गठबंधन की खुशी पूरे देश में है।
पूरे देश की जनता नाराज है, किसान दुखी है, नौजवानों की रोजगार छीन लिए, नौकरी का कोई भरोसा नहीं, देश के व्यापारियों को संकट में डाल दिया, आज हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ है, इसकी खुशी पूरे देश में है।
उत्तर प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन कांग्रेस को दरकिनार कर किया गया है, लेकिन बिहार में राजद और कांग्रेस पुराने गठबंधन सहयोगी रहे हैं। ऐसे में विपक्ष ने तेजस्वी की यात्रा पर निशाना साधा है, जैसा कि विधान पार्षद और जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बीबीसी से कहा,
स्थिति यह हो गई कि उनको राजनीतिक परिवार नियोजन कर दिया गया सीट शेयरिंग के मामले में। तो तेजस्वी यादव और इसी का ट्रेनिंग लेने के लिए उत्तर प्रदेश गए लखनऊ, कि कैसे कांग्रेस को दुरुस्त किया जाता है। तो बिहार में भी चूंकि कांग्रेस महागठबंधन का घटक दल बनने का दावा करता है, तो कांग्रेस को अपनी औकात पर कैसे खड़ा करे, इसके संबंध में वो स्कूल सीखने गए, ट्रेनिंग लेने के लिए गए।
मगर जानकारों का मानना है कि बिहार में राजद कांग्रेस को दरकिनार नहीं करेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के भरोसेमंद सहयोगी रहे हैं और बिहार में नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद महागठबंधन के सामने चुनौती कहीं ज्यादा बड़ी है। राजनीतिक विश्लेषक महेंद्र सुमन बताते हैं,
कांग्रेस भी मानती है कि बहुत ट्रस्टेड अलायंस है, आरजेडी भी इस बात को मानती है कि कांग्रेस बहुत ट्रस्टेड अलायंस है, तो बिहार में मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होगा। वो सभी प्रॉब्लम नहीं है लीडरशिप को लेकर, क्योंकि बिहार में मायावती जैसा बहुत कदावर लीडर नहीं है तेजस्वी कि राहुल जी से होर ले या ममता बनर्जी होर जैसे ले सकती हैं। लालू जेल में है, मतलब एक तो संभावना एकदम नहीं है कि तेजस्वी और यहाँ पर जो है कांग्रेस को माइनस करें। दूसरा बात, एक चीज़ बिहार में देख लीजिए कि बिहार में चुनौती ज़्यादा भरी है।
देश के अन्य राज्यों की तरह ही बिहार में भी बसपा का अपना एक छोटा सा ही सही मगर प्रतिबद्ध मतदाता वर्ग है। माना जा रहा है कि तेजस्वी मायावती से आशीर्वाद लेकर महागठबंधन के लिए इस मतदाता वर्ग के समर्थन की ख्वाहिश भी रखते हैं। मनीष शांडिल्य, बीबीसी पटना।
आज सोमवार है और आज के दिन आप इंतजार करते हैं अपने पत्रों का।
आपकी राय में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इंदु पांडे और आज मेरे साथ हैं,
मैं हूं वंदना, और इंदु जी मुझे खास तौर पर सीट से खींच कर लाई हैं।
तो चलिए चिट्ठियों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला मेल जो है यह है गौतम दत्ता का, किशनगंज बिहार से। कहते हैं कि प्रयाग में हो रहे कुंभ मेले की काफी चर्चा है, तो कुंभ को विश्व हेरिटेज की उपाधि भी मिली है, तो ये चाहते हैं कि बीबीसी इस पर कोई विशेष रिपोर्ट लेकर के आए।
जी बिल्कुल, क्या नाम बताया आपने?
गौतम दत्ता।
जी गौतम दत्ता साहब, आप थोड़ा इंतज़ार करिए, कुंभ शुरू होने को ही है और हमारी पूरी कोशिश है और एक छोटा सा एक योजना भी है कि वहाँ जाएंगे, जो अलग अलग पहलू है, क्योंकि कुंभ बहुत एक जिसको बोलते हैं ना मल्टी कलर्ड, कई रंग हैं कुंभ के, तो अलग अलग रंग जो हैं वो लाने की कोशिश करेंगे, जिसमें धर्म आध्यात्म तकनीक सब कुछ मिला जुला होगा, तो इंतज़ार करिए।
और वंदना, हमारे पास ये पोस्टकार्ड आया है प्रमोद कुमार श्रीवास्तव का, इन्होंने सौतन पुरवा अमेठी उत्तर प्रदेश से लिखा है। लिखते हैं कि ये हिंदी के नियमित श्रोता हैं।
जी बिल्कुल, तकरीबन हर हफ्ते चिट्ठी भी लिखते हैं।
और कहते हैं कि लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि बीबीसी हिंदी रेडियो शॉर्टवेव बंद होने वाला है, तो ये कहते हैं कि भाई क्या है ये?
जी बिल्कुल प्रमोद जी, गुजारिश है और आपके जरिए आगे भी कि किसी भी ऐसी अफवाह पर यकीन न करे, बीबीसी रेडियो जारी है और इसी पे यकीन करिए।
और आगे लिखा है कि हिंदी सभा दिन भर में वर्षांत की प्रस्तुति जो आदर्श राठौर की थी, बहुत अच्छी लगी इनको इस बार।
जी बहुत बहुत शुक्रिया, आदर्श तक आपकी बात जरूर पहुंचाएंगे।
और ये हमारे पास मेल आया है मनोज का, जिन्होंने भोगाली बिहू की शुभकामनाएं हमें भेजी हैं।
आपको भी
किया आसाम से। लिखते हैं कि 13 जनवरी की रात असम में चोरी करने की छूट वाली रात होती है, और इस बात पे आपको चौंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चोरियां कुछ दूसरे किस्म की होती हैं। माघ बिहू के पहले वाली रात मेजी जलाई जाती है, युवक घरों में पुआल, बांस, लकड़ियां और हंस बत्तख तक चुरा के ले आते हैं।
अरे वाह, भारत त्योहारों का देश है, अलग अलग त्योहार और रीति रिवाज, यही इसको अलग एक कहते ना गंगा जमुनी तहजीब जो होती है।
बिल्कुल, तो ये तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी रही। तो आगे लिखा है कि मैं तो रत जगा करके सुबह थोड़ा सोया, फिर बीबीसी सुनने लगभग जबरदस्ती उठ गया, तो वसीतुल्लाह खान साहब की अलसाई अल्फाज में डायरी सुनी वैलेंटाइन डे के बारे में, और जो दूसरा शब्द है ना
बेहयाई। आप अटक रही थी इसमें,
मैं अटक रही थी, तो इसके बारे में इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लगा इनको।
वसीतुल्लाह खान साहब की डायरी तो बहुत अच्छी होती है, शब्दों से वो बहुत खेलते हैं, और इन्होंने भी बहुत अच्छे अंदाज में तारीफ की अलसाई जो वो है ना, मुझे काफी पसंद आया इनका अंदाज।
और ये है हमारे पास ये जो मेल आई है, फारूक अब्दुल्ला फिजा, लक्ष्मीपुर रक्सौल पूर्वी चंपारण बिहार से। लिखते हैं कि फैजल मोहम्मद अली भाई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट बहुत अच्छी लगी, नमस्कार भारत में।
जी बिल्कुल, अभी राजनीतिक जो माहौल है वो धीरे धीरे गर्मा रहा है, और हमारी कोशिश रहेगी कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तमाम जो राजनीतिक विश्लेषण हैं वो आप तक पहुँचाते रहें।
और वंदना, ये बहुत लंबी चौड़ी हमारे पास मेल आई है मनोज कुमार ओझा की। कहते हैं कि बीबीसी हिंदी दिन प्रतिदिन निखरती जा रही है, क्योंकि इसकी हर खबर सूझबूझ के साथ की गई होती है।
जी तारीफ करने के लिए बहुत 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 शुक्रिया।
और वंदना, अब बारी है बहुत सारी तारीफों की, जो कि हमेशा की तरह रेहान फजल के लिए आती है,
विवेचना
जो कि इस बार उन्होंने कैफी साहब के ऊपर की थी। तो ये हैं अतुल कुमार यादव, ग्राम मनचोभा, जिला आजमगढ़। मनोज कुमार ओझा भी हैं जो कि बहुत पसंद करते हैं, और साथ में हैं तिनसुखिया से मनोज कुमार ओझा और संजीव कुमार, और इसके
अरे और भी हैं अभी।
हाँ हाँ बिल्कुल। इसके अलावा संजीव कुमार हैं जमालपुर गुगरी खगड़िया बिहार से, गणेश प्रसाद हजदार साहब जो काफ़ी इसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि भाई बहुत अच्छी लगी क्योंकि काफ़ी अच्छे दिलचस्प पहलू के बारे में बताया रेहान साहब ने।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। कैफी आजमी पर विवेचना आप सबको पसंद आई और आपने समय निकाल कर चिट्ठी या ईमेल लिखी, और शायद आप सबको पता भी होगा कि आज कैफी साहब की 100वीं वर्षगांठ है। बहुत बड़े शायर तो थे ही और फिल्मों में भी बहुत खूबसूरत उन्होंने गीत लिखे हैं।
तो इतने सारे धन्यवाद के बाद गौतम दत्ता किशनगंज बिहार से कहते हैं कि पटना से सीटू तिवारी की रिपोर्ट बहुत ही डरावनी लगी जो आंध्र प्रदेश से आयातित मछलियों से संबंधित थी, और इसके ऊपर वो कहते हैं कि बहुत अच्छा भी लगा। कई बार हमें चीज़ें डरावनी लगती हैं पर अच्छी भी लगती
हैं। जी क्योंकि जाहिर है डरावनी शायद इनको लगी होगी, लेकिन यह कि वो हमारे जो नज़रिया है दुनिया में हमारे आसपास इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसको और बढ़ाती है उसका दायरा। सीटू जो अक्सर पटना से हमारे लिए रिपोर्ट भेजती हैं उन तक इनका संदेश पहुँचाया जाएगा।
तो अब घड़ी की सुइयां कहती हैं कि पता बता दिया जाए। तो आप अगर हमें चिट्ठी लिखना चाहते हैं तो हमारा पता है आपकी राय बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003। और वंदना ईमेल आईडी क्या है?
hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
और अब नजर दौड़ाते हैं आज के खेल समाचारों पर।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं इंदु पांडे। आजकल चल रहे हैं मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन जो शुरू हुए थे 7 जनवरी से और खत्म होंगे 27 जनवरी को। तो साल का पहला ग्रैंड स्लैम शुरू हो गया और ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले ही दिन टूर्नामेंट का बड़ा उलटफेर हुआ। दुनिया के 10वें नंबर और टूर्नामेंट के 9वें नंबर के खिलाड़ी अमेरिका के जॉन इग्नर को गैर वरीय खिलाड़ी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऑस्ट्रेलियन ओपन के उद्घाटन के दिन टॉप 10 खिलाड़ियों में से टूर्नामेंट से बाहर होने वाले इग्नर पहले खिलाड़ी बन गए। और स्पेन के टेनिस खिलाड़ी वर्ल्ड नंबर 2 राफेल नडाल ने साल के पहले ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन के अगले दौर में अपनी जगह बना ली है। बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रियो भी टूर्नामेंट में अपनी शुरुआती मैच जीतने में सफल रहे। नडाल ने पुरुष एकल वर्ग के पहले दौर के मैच में ऑस्ट्रेलिया के जेम्स डकवर्थ को मात दी। राफेल नडाल ने ये मुकाबला 6-4, 6-3, 7-5 से अपने नाम किया। और दूसरी तरफ मारिया शारापोवा ने तो ब्रिटेन की हैरी डार्ट को ऐसी हार दी जिसे ब्रिटिश खिलाड़ी लंबे अरसे तक भूल नहीं पाएगी। शारापोवा ने ये मैच एक तरफा अंदाज में 6-0 से जीता। तो इस तरह से महिला वर्ग में रूस की मारिया शारापोवा और अमेरिका की स्लोनी स्टीफन्स ने दूसरे दौर में कदम रख लिया है, लेकिन लातविया की येलेना ओस्टोफेंको पहले दौर में ही हार के बाहर हो गई है। और अब अगले दौर में राफेल नडाल का सामना जर्मनी के जियान लेनार्ड स्ट्रॉफ और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और अगर हम बात करें भारतीय खिलाड़ी प्रजनेश गुणेश्वरन की, तो ग्रैंड स्लैम में अपने पदार्पण को वो यादगार नहीं बना पाए। ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले दिन अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो ने उन्हें हरा के पहले दौर से बाहर कर दिया। और इससे पहले महिला वर्ग में क्वालिफायर में भारत की अंकिता रैना और करमन कौर थांडी दूसरे और पहले दौर में पहले ही हार गए थे। तो आज खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
सभा के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। तुर्की ने कहा है कि वो अपने देश को आर्थिक रूप से बर्बाद करने की अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी से बिल्कुल नहीं डरेगा। यूरोपीय संघ के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक पत्र प्रकाशित कर ब्रेक्जिट समझौते के मसौदे के आश्वासनों के बारे में बताया है। ये मसौदा कल ब्रिटेन की संसद के समक्ष मतदान के लिए रखा जाएगा। दिल्ली पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाए जाने के मामले में आज पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार समेत उमर खालिद, अनिर्बन भट्टाचार्य पर भी भारत विरोधी नारे लगाने का मामला दर्ज किया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यहीं विराम देते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे रविशंकर कुमार। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।